मैं ज्ञान चंद्रिका कर्म कांड लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाण, नमो लोये सवसाहूणं, प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुक्कीर्तनं उच्चं परमभये सवखण्डिके कर्मकाण्डसमुदाय सहजाखण्डितज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरन मंगलकरन नमो सिद्ध सुखकार नेमी चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित इस गोमर्सार कर्मकांड ग्रंथ का पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका अनुवाद किया है, उसका उसी का अभी हम हिंदी अनुवाद देख रहे हैं और पीठिका संबंधी पृष्ठ संख्या 7 पर आ गए। ये ग्रंथ लिखने का प्रयोजन पंडित साहब बता रहे हैं क्योंकि अन्य अन्य जीव अन्य अन्य ऑब्जेक्शंस लेते हैं कि आप इस भाषा में क्यों लिख रहे हो, संस्कृत में शोभा देता है। कोई कहता है कि बहुत कठिन है, इसमें अपना प्रवेश नहीं होता है। कोई कहते कि इतना कठिन विषय क्यों पढ़ना, उसके बदले प्रथमानुयोग कहो, चरणानुयोग कहो। तो चरणानुयोग के पक्षपाती ने उनको बताया था कि ये करने से क्या होगा, कुछ व्रतादि करेंगे तो उसका फल मिलेगा। उसको कहते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे हम, हे स्थूल बुद्धि, क्या कहते हैं स्थूल बुद्धि, मोटी बुद्धि किसको कहते हैं, मोटी यानी वो मोटी ऐसा मोटी नहीं, हाँ, तूने व्रतादिक शुभ कार्य कहे वे करने योग्य ही है। पंडित टोडरमल साहब की विशेषता है कि सामने वाले के बोला हाँ तू कह रहा है वो सत्य, परंतु आगे ना परंतु वे सभी व्रतादिक शुभ कार्य सम्यक तो बिना ऐसे है जैसे अंक बिना बिंदी। अंक बिना बिंदी समझते होते जल, हाँ, नो वैल्यू, ओनली जीरो, हाँ, विदाउट, हाँ, एकड़ा वगैरह ना मिंडा। और जीवादिक का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना ऐसा है जैसे बांझ का पुत्र। क्या कहते हैं, सम्यक्त्व बिना व्रतादिक कैसे है, तो अंक बिना बिंदी। और कहते हैं जीवादिक का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना कैसा है, बांझ का पुत्र, जिसे बांझ है पुत्री, जिसको पुत्र नहीं हो सकता है तो उसको पुत्र है ऐसा कहना या पुत्र होने का ये संभावना तो कहते इम्पॉसिबल। वैसे ही जीवादिक का स्वरूप कोई जानता नहीं और समय तो हो जाए तो कहते वो हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवादिक जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। इसका अर्थ है पहले जीवादिकों को जानेंगे, जीवादिक में जीव भी और कर्म भी, क्योंकि उन्हीं को जानकर भेद विज्ञान करना है। तो पहले उन्हें जानेंगे, फिर सम्यक तो प्राप्त होगा और उसके पश्चात व्रतादिक धारण करने चाहिए। तथा तूने जैसे व्रतादिक शुभ कार्य कहे और उनसे पुण्यबंध होता है, वैसे जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है वह प्रधान शुभ कार्य। यानी व्रत भी क्यों करना है, तो पुण्य लगता है, पुण्य पुण्यबंध होता है। और यहाँ तो ज्ञानाभ्यास ऐसा है कि तो और उच्च प्रकार का पुण्यबंध होता है। पुण्य में भी वेरिएशन है ना, तीन टाइप का। जैसे कोई स्कूल खोलता है, रास्ते में जाते जाते हम किसी को मदद करते हैं तो वो भी शुभ भाव है। परंतु ये सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है,
ज्ञानाभ्यास।
हाँ, ज्ञानाभ्यास। और उसमें भी और सूक्ष्मता से जो हम अभ्यास कर रहे हैं, कहते हैं इससे सातिशय पुण्य का बंध होता है, अतिशय सहित पुण्य उसको कहेंगे सातिशय, उत्कृष्ट टाइप का। पुनश्च उन व्रतादिकों में भी ज्ञानाभ्यास की ही प्रधानता है, वह कहते हैं व्रत भी ज्ञान से ही किए जाएंगे, वो कैसे उसको बताएंगे।
यहाँ जो ज्ञानाभ्यास कह रहे हैं वो जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास।
हाँ, जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास, उसी की बात चल रही है, क्योंकि कर्णान योग की मुख्यता से बात चल रही है। कर्णान योग की मुख्यता या क्योंकि इस अभ्यास के प्रति जीवों को प्रेरित कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रयोजन है। जीवादिक तो जानना है, परंतु उसको और डिटेल में विशेषता सही जानेंगे तो सम्यक प्राप्त होने में और आसान हो जाता है। अब कहते व्रतादि क्यों पालना, तो कहेंगे अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए, तो उसके लिए बता रहे हैं जो जीव प्रथम जीव समासादिक जीवादिक के विशेष जानकर। जीव समासादिक यानी जीव समास कितने देखे थे हमने सुशील, 14। बहुत अच्छा। हाँ, सूक्ष्म केंद्रीय बादरे केंद्रीय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असंगी और संगी पंचेन्द्रिय और सभी के पर्याप्त अपर्याप्त। तो जीव समासादिक यानी वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन से काय मार्गणा वाले वगैरह वगैरह, कहाँ कितने जीव रहते हैं, कहाँ अनंत जीव रहते हैं, कौन से यानी समूर्षण जीव कहाँ कहाँ पैदा होता है, ये अगर बात नहीं जानेंगे तो उनको बचाने का प्रयास कैसे करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रथम जीव समासादिक जीवादिक के विशेष जानकर पश्चात यथार्थ ज्ञान करके हिंसादिक का त्याग करके व्रत धारण करता है, वही व्रती है। कुछ क्रिया अंगीकार करना व्रत नहीं, परंतु वहाँ हमें तो जहाँ अधिक जीव रहते हैं, अनंत जीव है, तो हमें उनके प्रति करुणा का भाव आता है, तो उस परिणाम का फल मिलता है। तथा जीवादिक के विशेष जाने बिना किंचित हिंसादिक के त्याग से अपने को व्रती मानता है। विशिष्ट प्रकार से आचार विचार करने उसके कारण मैं व्रती हो गया ऐसा मानता है, परंतु वहाँ विशेष जानता नहीं है कहाँ कितने जीव रहते हैं, तो कहते हैं वह व्रती नहीं है। क्या कहा? व्रत कर रहा है फिर भी उसको व्रती नहीं कहा, वो अपने को व्रती मान रहा है। इसलिए व्रत पालने में ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है, क्योंकि जानकर फिर उन जीवों को बचाने का जो वहाँ विचार होगा तो वो सच्चा व्रत होगा। पुनश्च तप दो प्रकार के हैं। ऊपर क्या कहा था चरणानियोग के पक्षपाती ने, तीसरे लाइन में ऊपर पक्षपाती जहाँ लिखा है उसको, कि हिंसादिक का त्याग करके व्रत का पालन किया जाए, तो उस लिखे कि जब जानेगा तब उसका सही हिंसादिक का त्यागना होगा। दूसरी बात क्या लिखी थी, उपवास आदि तप किया जाए। अब तप के बारे में बताते हैं। पुनश्च तप दो प्रकार के हैं, एक बहिरंग एक अंतरंग। वहां जिससे शरीर का दमन हो, दमन समझते हैं, शरीर खुश किया जाए, दमन करना है शरीर के
दुख ना हो। नहीं,
दुख देना नहीं, दमन करना, इंद्रिय दमन जिसको कहते हैं, यानी उसके प्रति हम भोगों से वापस लौट। हाँ,
यहाँ पर दमन का अर्थ ऐसा है,
इंद्रिय दमन,
पांच इंद्रियों का जो विषय है उसमें हम लगाव नहीं रखना, उसको इंद्रिय दमन कहेंगे या शरीर को दमन कहेंगे,
यानी उसके उससे हटना। नहीं तो क्या करते हैं, उसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ उसको श्रृंगार करो, तो ये उसी में लगे रहते हैं, तो उससे हट जाना तो उसको दमन कहेंगे। तो जिससे शरीर का दमन हो वह बहिरंग तप है, यानी इसमें उपवास है, यानी ओम उदर या अन्य अन्य जो उसके परिसंख्यान, यानी वो शरीर के लिए हम जो कहते हैं ना उसको खिलाओ पिलाओ, उसी के पांचों इंद्रियों संबंधी जो हमें सुख के हेतु लगते हैं, ऐसे विषयों में लगे रहते हैं, और जिससे मन का दमन हो वह अंतरंग तप। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है। दोनों तपों में अंतरंग तप उत्कृष्ट है। उपवास आदि तो बहिरंग तप है और ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत में भी छह प्रकार के अंतरंग तपों में चौथा स्वाध्याय नामक तप कहा है। इससे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। यानी स्वाध्याय से बढ़कर तप है ध्यान। इसलिए तप करने में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है, क्योंकि ज्ञान सही होगा तभी ध्यान भी होगा। तो इसलिए वहां भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। पुनश्च जीवादि के विशेष रूप गुणस्थानादिकों का स्वरूप जानने पर ही, गुणस्थानादि यानी 20 प्ररूपणा सारी लगा लेना, गुणस्थान मार्गणास्थान सभी, यानी जीव समास पर्याप्ति प्राण सब सभी बातें। कहते जीवादि के विशेष रूप गुणस्थानादिकों का स्वरूप जानने पर ही लगाया। अरिहंतादिकों का स्वरूप यथार्थ रीति से पहचाना जाता है। अरिहंतादिक में किस किस को लेना? हाँ, पांचों परमेष्टिक यानी पूरा मोक्ष मार्ग का स्वरूप ख्याल में आता है। अरहंतों का, आचार्यों का, साधुओं का, और नीचे पंचम गुणस्थानवर्ती है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, इतनी क्या बात, सिद्धों का भी स्वरूप, क्योंकि उसमें भी कौन कौन सी मार्गणाएं गुणस्थान उससे अतीत हो गए हैं वो बात हमें ख्याल में आ जाती है। हमने देखा था अष्टपावर में, आपको याद होगा, उसमें बात आई थी स्थापना अरिहंत की। हम किसको स्थापना मानते हैं? भगवान की मूर्ति हमने लाई और उसमें स्थापना कर दी, महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। वहां क्या लिखा था स्थापना अरिहंत में, अश्विन में याद है? हाँ, भाव स्थापना है ने क्या? तो अरिहंत भगवान के जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, उनके सारे गुणस्थान मार्गणास्थान सब कुछ निश्चित करना, उन पर लगाना, और अरिहंतों का स्वरूप समझ में अपने ज्ञान में लेना, उसको स्थापना अरिहंत कहा था। कौन कह रहे? कुनकुंदाचार्य स्वयं। जहाँ समय सार में कहते हैं मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गणास्थान नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, वहां कहते कि उसके द्वारा पहले निश्चित करो अरिहंतों का भी स्वरूप, तो फिर अपना भी स्वरूप निश्चित किया गया ना। अपना जीव समाज कौन सा है, अपनी पर्याप्ति क्या है, प्राण क्या है, कषाय ज्ञान सब सब उस पर हम लगा के लिखेंगे अपना विषय। वो चला यहाँ पर वो विस्तार से। तथा अपनी अवस्था पहचानी जाती है। अपनी अवस्था यानी गुणस्थान की अपेक्षा अपनी अवस्था, कषाय की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, ये सभी अलग अलग अपेक्षाओं से अपना स्वरूप अपनी अवस्था नक्की की जा सकती है। ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग तीव्र भक्ति प्रकट होती है, जब अरिहंतों का सही स्वरूप ज्ञान में आएगा तभी उनके प्रति सच्ची भक्ति प्रकट हो जाएगी। यहाँ भी कर्णानियों का अभ्यास जब करने लगते हैं, और ऐसे अत्यंत सूक्ष्म बातें इसमें इतनी विस्तार से बताई है कि केवल ज्ञान की महिमा आती है। नहीं तो हर यहाँ अरिहंत है सर्वज्ञ इतना कहने से कुछ नहीं होता है। तो कहते ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग तीव्र भक्ति प्रकट होती है वही बहुत कार्यकारी है। नहीं तो हम क्या कहते हैं, बहुत गा गा के भगवान की पूजा विधान वगैरह करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे भगवान है, हम उस कुल में जन्मे हैं तो हम इनकी पूजा करें। अन्य मति वो अपने अपने जो कुल में जो देवता मानते उनकी पूजा करते हैं, तो उनमें और हमारे में क्या अंतर होगा? जिस कुल में जो उत्पन्न हुआ है उस भगवान की, उस देवी देवताओं की वो बहुत, इसको कहते मनोभाव से पूजा करता है। ऐसा बाहर तो कितना दिखाई देता है, इसको कितनी भक्ति है, और उसके लिए भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, कितने लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। तो कहते सच्ची भक्ति किसके होगी? तो जो भगवान का स्वरूप निश्चित करके ज्ञान में उनका स्वरूप भाषित हो जाए तो सहज रूप से वहां भक्ति प्रकट होगी, तीव्र भक्ति प्रकट होगी, और वही कार्यकारी है। केवल वो उनके बाहर से धूमधाम से विधान आदि करना उसका निषेध नहीं है, परंतु सच्चा अगर स्वरूप पहचानने में आए तो ही वो कार्यकारी है। तथा जो कुलक्रमादिक से भक्ति होती है। अच्छा, बेन कुलक्रमादिक से नहीं क्या? अपने कुल में जो प्रथा चल रही है उनको नमस्कार करना। जैसे हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमने कभी जैन देवों के अलावा भगवान के अलावा किसी को नमस्कार नहीं किया, तो क्या आप असच्चे हो गए? नहीं, स्वरूप यदि नहीं जानेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे बच्चे खेलते हैं वो गोटी, क्या कहते हैं आप उसको?
लखोटी।
लखोटी गुजराती में, हाँ मार्बल, 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 हाँ आजकल के इंग्लिश करो ना, सब सब खुश, मराठी, हिंदी, गुजराती, हाँ। तो वो मार्बल में कोई हीरा है और वो बच्चा उसको मार्बल समझ के ही खेलता है ना, तो उसको उसकी वैल्यू है कि नहीं है? वो हीरे में तो वैल्यू है अपनी बहुत, पर उस बच्चे को उसकी वैल्यू कितनी है? अन्य जो मार्बल है उतनी उसकी वैल्यू है। वैसे ही
उसके बच्चे को उस हीरे की पहचान नहीं,
हाँ वो बच्चे को हीरे की पहचान नहीं है और वो उसको मार्बल समझ कर ही खेल रहा है, तो उसके लिए वो पत्थर है अन्य पत्थर के समान। वैसे ही हम इस कुल में जन्मे इसलिए हमने भक्ति की अभी जन्म से लेकर आज।
वो कुलक्रम की भक्ति तो
हाँ, कुलक्रम की भक्ति
बापा बराबर बताएं ना बापा जाते थे
हाँ। जाते जब तक तो सही ज्ञान होने पर सच्चे भगवान का भी स्वरूप समझ में आया और जो कुछ खोटा करते थे वो भी छूट गया अपने आप। जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, अभी हमको नेम लेना है कि आज से हम नहीं वहां जाएंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, वो बात नहीं होती। तो यहाँ वही बताते हैं, जो कुलक्रमादिक से भक्ति होती है वह किंचित मात्र फल की दाता है, इसलिए भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। यहाँ तो ऐसा कहा है कि सच्चे जो कहते हैं भगवान जो सर्वज्ञ वितरागी है तो उन्हीं को जो नमस्कार कर रहा है परंतु उनका स्वरूप नहीं समझ रहा है, उसके लिए क्या शब्द है मालूम है? गृहित मिथ्यात्व का। क्यों? जैसे अन्य मति अपने भगवान को मानते हैं ऐसे ये भी अपने भगवान को माने, वो किसी का कुछ करता है कि नहीं करता है कि क्या, फिर वो सब उसके सामने भी गिड़गिड़ाएगा, मन्नत मांगेगा, कुछ ना कुछ अपने काम ठीक हो जाए ऐसे भगवान के सामने जाके इच्छा प्रकट करेगा।
वर्तमान जन्म की
यानी सच्चे भगवान मिलने पर भी उनको वैसा ही मानते आया, यानी उसमें कुछ फर्क नहीं हुआ, समझ में आई बात? इसलिए कहते भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधानता, यानी जानकर जो भक्ति उत्पन्न होती है सहज रूप से वही सच्ची भक्ति है। अब चरणान योग वाले को दान की बात करते, यहाँ बताया था ना तीसरी बात क्या लिखी थी, उपवास आदि तप किया जाए, अरंत आदि की पूजा किया जाए, वहां पर भी बताया कि जानकर वो सच्ची भक्ति होगी, नाम स्मरण वगैरह भी हो जाए, दान दिया जाए। अब दान की बात ले रहे हैं यहाँ पर, दान चार प्रकार का है मालूम है कौन से? यहाँ लिखा देखो, आहार दान, औषध दान, अभय दान और चौथा कौन सा है? ज्ञान दान। तो कहते उनमें आहार दान, औषध दान, अभय दान तो तात्कालिक शुद्धा के दुख को, यानी आहार दान किसको मिटाता है? तात्कालिक यानी टेम्पररी, अभी उस समय जो शुद्धादिक यानी भूख आदि जो है उस दुख को दूर करते हैं, औषध दान रोग के दुख को दूर करता है और अभय दान मरणादिक के भय के दुख को ही दूर करते हैं। ये भी एक भव का कल्याण होगा, कोई मरण आता है, संकट आता है उसको, तो उसको कोई अभय दान दिया जाता है तो कहते हैं कि उसका मरण का भय दूर हो जाएगा। यहाँ कहते हैं और ज्ञान दान है वह अनंत भव संतान संबंधी दुख, भव संतान यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो भव चल रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, उसको संतान रूप से प्रवाह रूप से चला रहा है, कितना? एक दो नहीं, अनंत। तो कहते हैं अनंत भव संतान संबंधी दुख दूर करने का कारण है। सही ज्ञान हो जाए तो आगे, यदि वो नहीं जानता तो क्या होता? अनंत काल तक जन्म मरण करता है, तो उसका सारा ही वहां संसार का अंत आने के लिए ज्ञान कार्यकारी है। तीर्थंकर केवली आचार्य आदिकों के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यानी उनसे भी ये कार्य हो रहा है। तीर्थंकर इच्छा सहित तो नहीं कर रहे परंतु उनसे ये ज्ञान दान सहज रूप से हो रहा है बिना इच्छा के, इसलिए ज्ञान दान उत्कृष्ट है। सो स्वयं का ज्ञानाभ्यास हो जाए तो अपना भला कर लेता है और अन्य जीवों को ज्ञान दान देता है। यानी पुस्तक छपवा के बांटे हमने तो ज्ञान दान हुआ कि नहीं हुआ? शुभ भाव हुआ, कुछ फल मिला। परंतु सच्चा भी ज्ञान दान कैसे कहेंगे? स्वयं पढ़कर अगर और उनको पढ़ाएंगे तो ज्ञान दान उत्कृष्ट पद्धति से। ज्ञानाभ्यास बिना ज्ञान दान देना कैसे हो सकता है? इसलिए दान में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। देखो ऐसा आता है, संस्कृत में एक श्लोक आता है कि जो पैसे होते हैं वो खर्चा करने से कम हो जाते हैं। दूसरों को दे दिया जाए तो कम हो जाएगा अपने पास, पर ज्ञान ऐसा है दान कि दूसरों से जितना आप दे दो उतना अपना बढ़ता चला जाता है, तो फायदे में है ना। इसलिए दान में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। पुनश्च जिस प्रकार जन्म से ही कितने ही पुरुष ठगों के घर गए, ठग समझते हैं ना, चोर, वहां उन ठगों को अपना मानते हैं। यानी हो सकता है कि कोई बालक गुम हो गया और वो ठगों के घर पहुंच गया और उन्हीं को अपने रिलेटिव, अपने माँ बाप किसी को मान लेता है। उनमें से कदाचित कोई पुरुष किसी निमित्त से अपने कुल का और ठगों का यथार्थ ज्ञान होने से, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात बन गई तो उसको अपने सच्चे कुल का पता लग गया और ये सारे ठग है, अपने कोई नहीं है, ऐसा उसको पता चला। तो ऐसा ज्ञान होने से ठगों से अंतरंग में उदासीन हुआ, उनको पर जानकर संबंध छुड़ाना चाहता है। अभी उन्हीं के पास रह रहा है, अभी उसको सही बात पता चल गई है, तो अभी उनको पर जानता है, वो मेरे कोई नहीं ऐसा जान रहा है और उनके प्रति उसके कोई लगाव नहीं रहा, उदासीन हुआ, तो कहते संबंध छुड़ाना चाहता है। बाह्य में जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है, भले वहां नहीं छूट पाता है, वही रह रहा है, परंतु अंतरंग में उनसे प्रति कोई लगाव नहीं है, कब मैं इनसे छूटूं ऐसा उसको हो रहा है। पुनश्च कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है और किसी कारण से किसी ठग से अनुराग रूप प्रवर्तता है, किसी ठग से लड़कर उदासीन होकर आहार आदि का त्यागी होता है। ये तो उदाहरण दिया कि जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाए तो उसके तो उनके प्रति कोई लगाव नहीं है और वहां से वो संबंध छुड़ाना चाहता है। परंतु अन्य कोई पुरुष क्या कर रहा है, ये ठगों को ही अपना जान रहा है, वो भी उन ठगों का है नहीं है, वो भी किसी और का है, परंतु उसको ज्ञान नहीं है तो उन ठगों को ही अपना जान रहा है। उनमें से किसी के साथ उसके अनुराग होता है और किसी के साथ लड़ता है और फिर लड़ने के कारण उदासीन होकर आहार आदि का त्याग करता है। ये तो उदाहरण हुआ, अब यहाँ हम पर घटित कर रहे हैं। उस प्रकार अनादि से सर्वजीव संसार को प्राप्त है, वहां कर्मों को अपना मानते हैं, वहां ठगों को अपना मानता था, यहाँ कर्मों को अपना मानता है। कर्मों को अपना मानता है, कर्म तो दिखाई नहीं देते, उसको कैसे अपना मानता है? हाँ, कर्म के फल तो दिखाई दे रहे, तो कर्म के फल में जो जो बातें हो रही उसको अपना मानता है। हमने बहुत बार देखा था, ज्ञान की हीनता हो रही है, दर्शन की हीनता हो रही है, मोहनि के कारण श्रद्धा की विपरीतता मिथ्या तो हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है चारित्र मोह के उदय में, दानादि में बाधा हो रही है, वीर यानी पुरुषार्थ नहीं लग रहा है, संयोगों में उसको अनुकूल प्रतिकूल लगता है, नहीं संयोग उनकी प्राप्ति कहेंगे हम, नाम कर्म के उदय में तो शरीर की प्राप्ति है, आयु में लंबी आयु छोटी आयु जो कुछ है विशिष्ट आयु में रहता है और गोत्र में उच्च या नीच गोत्र मिलता है, ये सारा क्या है, कर्म का फल है। तो यहाँ कहते हैं कि कर्मों को अपना मानते हैं, कर्मों के फल में जो जो बातें बनती है वही मेरा स्वरूप ऐसा मान लेता है। तो ये सबको निकाल दिया हमने, शरीर को निकाल दिया, संयोग को निकाल दिया, अरे हमारे बड़े शुभ राग, इतने शुभ राग हो रहे उसको भी निकाल दिया, आपके पास कुछ रहा कि नहीं रहा? कुछ नहीं रहा ना, तो आप जीरो हो गए, क्या रह गया? कुछ नहीं रहा, अरे अपना पूरा स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप अपना है। कर्म के उदय में तो ज्ञान की हीनता हो रही है, और भगवान के तो कर्म है ही नहीं है वहां पर ज्ञानावरणादि। सिद्धों में तो कोई भी कर्म नहीं है, तो जो जो सिद्धों में है वो सब कुछ मेरे में, और अभी जो बातें बन रही जिसको हम अपना स्वरूप मान रहे वो सारे कर्म के उदय में हो रहे। तो हमने क्या माना अपने को, हीन माना क्या अपने को, अच्छा माना, अच्छा माना, क्या अच्छा हुआ उसमें, शरीर अच्छा है, धन अच्छा है, बेटी अच्छी है, जमाई अच्छा है, हाँ। तो हमने बोला सिद्धों में जो कुछ है वो मैं वैसा मैं हूँ, और ये जो ऊपरी बातें है, संयोग है, शरीर है, आयु की भी बात है, तो अच्छा के बुरा वो, अरे वो मेरा है ही नहीं है, उसमें अच्छा बुरा भी नहीं है। रोज आना तो पक्का हो जाएगा। क्यों है यानी मैंने अपने को शरीर रूप माना, फिर हमने उसमें अच्छा बुरा मानना शुरू किया, काला अच्छा के बुरा अच्छा, आंखें ऐसी अच्छी की वैसी अच्छी, नाक ऐसा अच्छा के वैसा अच्छा, वो सब शुरू हो गया। क्योंकि मैं उस रूप हूँ ये मान लिया, यहाँ लिखा ना, वहां कर्मों को अपना मानते हैं, उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से जीव का यानी अपना स्वयं का, और कर्म का यथार्थ ज्ञान होने से अपना यथार्थ ज्ञान है, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, वीतराग सर्वज्ञता मेरा स्वभाव है, स्वभाव, और ये सारी जो बातें अभी पर्याय में बन रही वो सारे कर्म के उदय में बन रही, तो हम उसको कर्म के खाते में डाल देंगे, वो भले आपके पास पड़ी है, अपने को उसको अपना नहीं मानना, मानने की बात आती है ना पहले में पहले। तो यहाँ कहते हैं कि अपना और कर्म का यथार्थ ज्ञान होने से, अब यहाँ सारे यथार्थ ज्ञान हम करेंगे, जीवादि का तो हमने यथार्थ ज्ञान कर लिया है जीवकांड में, अब कर्म संबंधी भी यथार्थ ज्ञान करेंगे, तो अपनी और उसकी भिन्नता बिल्कुल ख्याल में आएगी। अभी तो सारा मेरा 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 मानकर बैठे, अपना असली स्वरूप तो जानते नहीं है, और जो ऊपर की कर्मों के उदय में होने वाली बातें जो है, शरीर आदि जो पुद्गल की रचना है, वही मैं हूँ, ये भ्रमणा चल रही है। तो कहते अपना और कर्म का यथार्थ ज्ञान होने से कर्मों से उदासीन हुआ, उनको पर जानकर उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है। कर्मों से उदासीन हुआ, कर्मों के उदय में जो जो कोई बातें बनती उससे उदासीन है, यानी ये मेरी है ही नहीं, इसे उसको ज्ञान वर्त रहा है, विभेद ज्ञान चले ना, ये जो शरीर की रचना हुई है उस रूप मैं नहीं हूँ, तो ये मोहराग द्वेष के परिणाम होते, उस रूप तो मैं हूँ के नहीं हूँ, वो भी कर्म के उदय में चल रही है, तो उससे भी उदासीन हुआ है। जिसको कहते हैं राग का भी राग नहीं रहा अभी, यानी मैं ऐसा राग पलटू और वैसा करूँ, पाप छोड़कर पुण्य करूँ, ऐसा परिणाम होगा, परंतु उसको अच्छा मानता है, मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता वहां नहीं। बाह्य जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है, बाह्य जैसा निमित्त है, क्योंकि जैसे कर्मों के उदय में जैसी बातें बन रही वैसे तो हो ही रही है, फिर भी उनको अपना नहीं मान रहा है। इस तरह जो ज्ञानाभ्यास से उदासीनता होती है वही कार्यकारी है। पहले तो मैं भिन्न हूँ, शरीर में हूँ, नहीं नहीं नहीं, केवल रटने मात्र से करता था, अब यहाँ सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो बिल्कुल उसमें उसके कोई अपनापन रहेगा ही नहीं। पुनश्च कोई जीव उन कर्मों को अपने जानता है, ये अन्य कोई जीव की बात चल रही। पहला कौन सा लिया, किसी निमित्त से यानी किसी ज्ञानी के उपदेश से आदि उस पर विचार करे तो उसको अपना और कर्मों का ज्ञान भिन्न भिन्न भाषित होता है और उनसे अपना छुड़ाना चाहता है, फिर भी जैसा निमित्त बने वैसा होता है, जैसे उदय चलेंगे उसके वैसे कुछ काल तक रहेगा, फिर भी अभी उनसे वो उदासीन हो गया है। अब कोई अन्य जीव यानी जिसको अभी वो ज्ञान नहीं है यथार्थ, उसकी बात चलेगी, तो कोई जीव उन कर्मों को अपने जानता है और किसी कारण से किसी शुभ कर्म से अनुराग रूप प्रवर्तता है। शुभ कर्म से अनुराग यानी शुभ कर्मों के उदय में जो संयोगों में जो कुछ बातें बनती उससे अनुराग, उससे प्रीति, उसके लगाव हो जाता है। किसी अशुभ कर्म से दुख का कारण जानकर उदासीन हुआ, क्योंकि अशुभ कर्म के उदय में जो कोई वहाँ
इसी के मोह के कारण उसमें अनिष्टता भासित होती है, स्वयं दुखी होता है, तो कर्मों से वो तो दुखी होता जानकर उदासीन हुआ विषयादिक का त्यागी होता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि हो सकता है किसी के माँ की मौत हो जाए, मरण हो जाए, या अन्य कोई बहुत प्रिय व्यक्ति छोड़कर चला जाए, हो सकता है अपने पुत्र का मरण हो जाए, तो कहते हैं विषयादिक का त्यागी होता है। हो सकता कोई मैं एक दिन का भोजन नहीं करूंगा हफ्ते में, या अमुक चीज मैंने छोड़ दी,
ऐसे नमक छोड़ देना,
कोई नमक हो, या अभी क्या आम अच्छा लगता है, आम अभी मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा, मैं अमुक अमुक वस्तु का त्याग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उस पुत्र के प्रति लगाव था, वो अभी रहा नहीं, तो इसने ये त्याग कर दिया, विषयादिक का त्यागी हुआ।
तो पुत्र को आम बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा।
यानी ऐसे मन से कुछ बातें करके किसी विषय का त्याग भी करता है। विषयादिक का त्यागी होता है। इस तरह ज्ञान बिना जो उदासीनता होती है, जिसको स्मशान वैराग्य भी कहते हैं, है ना, तो उस कारण कुछ चीजें छोड़ भी देता है, तो ज्ञान बिना जो उदासीनता होती है वह पुण्य फल की दाता है, मोक्ष कार्य को नहीं सहती। इसलिए उदासीनता में भी ज्ञानाभ्यासी प्रधान है। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञानाभ्यासी प्रधान जानना। देखो महामुनियों के भी ध्यान अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। मुनियों के लिए क्या है? ध्यान है और अध्ययन है। इसलिए शास्त्र अध्ययन से जी और कर्म का स्वरूप जानकर स्वरूप का ध्यान कर, क्या करना, कर्म का ध्यान करना नहीं कहा, जीव का भी स्वरूप जानो, कर्म का भी जानो। तो कर्म का स्वरूप भी जाना, कर्म के उदय के फल भी जाने, और उससे अपना उदासीन हो गए, और उससे अपना उपयोग हटाकर स्वरूप में लीन हो गए, तो स्वरूप का ध्यान करना। पुनश्च यहां कोई तर्क करे कि कोई जीव शास्त्र अध्ययन तो बहुत करता है और विषयादिक का त्यागी नहीं होता, तो उसको शास्त्र अध्ययन कार्यकारी है या नहीं? चल में ना प्रश्न, बहुत शास्त्र अभ्यास करे परंतु जहां तहां खाने में, ये में, उसमें, इसमें बहुत वृद्धता है, तो उसका क्या फल, इतना शास्त्र पढ़ता है? तो कहते यदि है तो महंत पुरुष क्यों विषयादिक का त्याग करते हैं? यदि विषयादिक करता रहे और शास्त्र भी अभ्यास करता रहे और वो उसको कार्यकारी है, तो जो बड़े बड़े पुरुष हो गए हैं त्यागी, उन्होंने क्यों त्याग किया? अब कहते यदि नहीं है, यानी उसके शास्त्र अध्ययन कार्यकारी नहीं है यदि, तो ज्ञानाभ्यास की महिमा कहाँ रही? यानी ज्ञानाभ्यास की महिमा तभी मानता है कि ज्ञानाभ्यास भी करे और विषय का त्यागी भी हो जाए। उसका समाधान, शास्त्राभ्यासी दो प्रकार के हैं, एक लोभार्थी एक धर्मार्थी। हो सकता है पैसे का लोभ हो, यश का लोभ हो, लोग मुझे प्रशंसा करें, मैं कुछ बहुत बड़ा कहलाऊं, तो ये है लोभार्थी।
मानार्थी आ गया,
सभी मान, हाँ, कषाय के कारण। यहाँ देखा, वहाँ जो अंतरंग अनुराग के बिना लिखा ना, ख्याति पूजा लाभादिक के लिए, कौन सा लाभ? लोग मेरी वाहवाह करें, या मुझे कोई धन मिले, लोग मेरा बहुमान करें। तो कहते ख्याति पूजा लाभादिक के लिए शास्त्राभ्यास करता है वह लोभार्थी है, वह विषयादिक का त्याग नहीं करता। अथवा ख्याति पूजा लाभादिक के लिए विषयादिक का त्याग भी करता है। क्या कहना चाहते हैं? विषयों का त्याग भी जो करता है वो किस लिए? कि लोग मुझे बड़ा कहें, घर का भी त्याग करे, अन्य भी किसी का त्याग करे, तो भी उसका शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है। ये लोभार्थी की बात की। तथा जो अंतरंग अनुराग से आत्महित के लिए शास्त्राभ्यास करता है, वह धर्मार्थी है, स्वयं भी जो अभ्यास कर रहे हैं वह अपने अंतरंग आत्महित के लिए करता है, औरों को भी है, वो भी उसकी उसी की मुख्यता होती है। प्रथम तो जैन शास्त्र ऐसे है कि जिनका धर्मार्थी होकर जो अभ्यास करता है वह विषयादि का त्याग करता ही है, क्योंकि उसके जो सच्चा ज्ञान हो जाता है तो विषयों के प्रति उसकी रुचि अपने आप कम होती है। हम देखते हैं ना, जब हम पहले शास्त्र अभ्यास नहीं कर रहे थे, अभी हमारी इसमें रुचि हो गई है, तो क्या बाह्य जितनी रुचि पहले थी उतनी अभी है कि नहीं, अपने आप जज कर सकते हैं। अपने परिणामों को अपने से तुलना करनी, अन्य जीवों से नहीं, कि मैंने इतना अभ्यास किया, इतने भी उसका किया, तो उसकी कितनी रुचि है, मेरी कितनी रुचि, उसकी बात नहीं है। हमारी जो अन्यत्र जितनी रुचि दौड़ती थी, और अब हमारी जो कोई पोजीशन है, अपने को कुछ ख्याल में आता है कि नहीं आता, इतना देखना है। तो यहाँ तो कहते कि विषयादि का त्याग करता ही है। बाह्य में देखो, कोई ऐसा भी होगा ना, चक्रवर्ती कितना विषयादि का त्याग करता है, ये बाहर से छोड़ने को त्याग नहीं कहा है, उसका उसमें कोई लगाव नहीं रहा, ख्याल में आती है। ऐसे भी हो सकता है, ऊपर बताया विषयादि का त्याग भी करता है, परंतु अंतरंग से उसकी चाह कहो, उसकी जो रुचि महिमा, वो कम नहीं हुई है। तो कहते हैं उसके तो ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही, परंतु कदाचित पूर्व कर्म के उदय की प्रबलता से। देखो यहाँ ये बात आई,
क्या बात, न्याय रूप
पूर्व कर्म के उदय की प्रबलता से। यहाँ ऐसा हो सकता है, अभी हमने चक्रवर्ती की बात देखी, पूर्व कर्म की उदय की प्रबलता, अभी पुण्य कर्म का उदय भी चल रहा है, तो उसको तो वो भी भोगना है ना, विशिष्ट उसके तो संयोग आदि वो प्राप्त हो गए ही हो गए। न्याय रूप विषयों का त्याग न बन सके तो, ये अन्याय अनिति आदि से उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, न्याय रूप विषयों का त्याग न बन सके तो भी उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने से ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है। यानी उसमें विषयों में ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं रहती है, उसको ऐसा नहीं है कि वो करने जैसा नहीं मानता है, फिर भी अभी छूट नहीं रहे, इसकी बात है। जैसे असंयत गुण स्थान में विषयादि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग अपना होता है, चौथे गुणस्थान की बात है, गुणस्थान का तो अपना विषय चला है यहाँ पर, असंयत है ना, अविरत समय दृष्टि। यह प्रश्न, जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसके विषयादि का त्याग न हो ऐसा तो बन नहीं सकता, ये प्रश्नकार प्रश्न कर सकता है। उसका कहना है उसको तो विषयादिकों का त्याग तो होना ही चाहिए, क्योंकि विषयादि का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन है, तो ये स्वयं ही तो भोग रहा है ना, ये इसका प्रश्न है। वहां समाधान, परिणाम ही दो प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक। देखो, जो हम सातवें गुणस्थान के लिए अबुद्धिपूर्वक जो अपने ख्याल में न आवे उसको कहते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। हाँ, दोनों ही अर्थों में ये शब्द आते हैं शास्त्र में। अब यहाँ देखो क्या अर्थ लिखा, वहां अपने अभिप्राय के अनुसार हो वे बुद्धिपूर्वक, और दैव ने कर्म निमित्त से अपने अभिप्राय से अन्यथा हुए अबुद्धिपूर्वक। यानी बुद्धिपूर्वक यानी सोच समझ कर प्लानिंग करके उसको हासिल करना विषयादिकों को, वो बुद्धिपूर्वक होगा, और वो चाहता नहीं था और वैसे सहज रूप से उसके वो संयोगों की प्राप्ति होना, वो अबुद्धिपूर्वक है। जिस प्रकार सामायिक करते हुए धर्मात्मा का अभिप्राय ऐसा है कि मैं मेरे परिणाम शुभ रूप रखूं, वहां जो शुभ परिणाम ही हो वे तो बुद्धिपूर्वक, जिसको हम सोच समझ कर कहते हैं ना, अपने हम चाहते हैं हमारे परिणाम शुभ में हो और वहां शुभ में लगे, तो वो कहेंगे बुद्धिपूर्वक। है ना, फिर भी वहाँ कर्मोदय से स्वयं व अशुभ परिणाम हो, वो नहीं चाहता है अभी यहाँ पर, वो तो सामायिक में बैठा है, पूजा में बैठा है, तो उसको यहाँ अबुद्धिपूर्वक कहा है। वे अबुद्धिपूर्वक जानना, ये तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार ये तो उदाहरण दिया यहाँ पर, जो धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसका अभिप्राय तो विषयादि के त्याग रूप वीतराग भाव का ही होता है, उसके तो वीतराग भाव की प्राप्ति ही वो चाहता है। वहां यदि वीतराग भाव हुआ तो वह बुद्धिपूर्वक है, और चारित्र मोह के विदय से सराग भाव हो जाए तो वह अबुद्धिपूर्वक है। यानी उसका कर्ता नहीं है, जो हम कहते ना ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है, हो रहा है ना वहां पर, तो नहीं है तो कौन कर रहा है, ज्ञानी नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है, ऐसा जो प्रश्न उठता है, तो वहां ये उसका वो कर्ता नहीं हो रहा है, ये बात है। यानी ज्ञानी सराग यानी राग सहित भाव, यानी क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है, ज्ञानी हुआ है सम्यक दृष्टि हुआ है तो चौथे गुणस्थान वाला है, घर गृहस्थी चल रही है उसके, तो उसके अपने कुटुंबियों के प्रति राग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ उसकी बात है यहाँ पर। नहीं नहीं, उसके भूमिका के अनुसार उसको गिनेंगे हम, चौथे गुणस्थान वाले के तो हाँ नहीं, वो अतिचार अनाचार इसके बारे में नहीं कहेंगे हम, हाँ क्योंकि वो तो युद्ध भी खेलेगा व्यापार भी करेगा और पुत्र के प्रति भी उसको चारित्र मोह तो होगा कि नहीं होगा, हाँ यानी ये राग ठीक नहीं है, यानी राग का राग नहीं उनके, फिर भी राग उठ रहा है।
आपका जो कहना है अतिचार या अनाचार की बात जो आप पूछ रहे हैं,
तो
मैं ये कहता हूँ ये तो व्रतियों के या अनुव्रतधारियों की ये होती है, ये तो अव्रत है ना, अभी
विषयों के त्याग रूप की बात चल रही नहीं पर? हाँ यहाँ तो
दोनों में ले सकते हो,
यहाँ तो अभिप्राय के अनुसार हो वो बुद्धिपूर्वक, और दैव के निमित्त से अभिबुद्धिपूर्वक, मिथ्या दृष्टि के भी लगा सकेंगे हम, जैसे हम कहें हम सोच समझ कर अभी यहाँ स्वाध्याय में बैठे और हम चाहते हैं कि इस विषय को ही पढ़े, परंतु ऐसा कुछ हो जाए बीच में, लाइट गई
बेल
कोई जोर से बाहर एक्सीडेंट की आवाज आ गई तो अपना उपयोग इधर से वहां गया, हम नहीं चाहते वहां अपना कोई उपयोग वहां चला जाए। वह तो अबुद्धिपूर्वक, इसलिए बिना वश जो सराग भाव होते हैं उनसे उसके विषयादि की प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। परिणाम ही दो प्रकार के बताए ना, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक, इसलिए उसमें विषयादि में प्रवृत्ति भी दिखाई देगी वहां पर। यहाँ तर्क, यदि ऐसा है तो हम भी विषयादि का सेवन करेंगे, हाँ तर्क कहाँ लगाता है, हमेशा इसकी बुद्धि उल्टी चलेगी प्रश्नकर्ता की, हम भी कहेंगे कि हम विषय हमारे अबुद्धिपूर्वक परिणामों से हो रहा है, कर रहा है स्वयं सोच समझ कर, तो कहता है हम भी विषयादि का सेवन करेंगे और कहेंगे कि हमारे उदयाधीन कार्य हो रहे हैं, क्योंकि शास्त्र थोड़ा पढ़ा है, कोई बातें मालूम है, तो क्या करे, ये हमारा कर्म का उदय है, हमें भोगना पड़ता, क्यों नहीं आए स्वाध्याय में, अंतराय कर्म का उदय है, हम क्या करें, बुद्धिपूर्वक तो वहां लगा हुआ है उसका घर में रहने का, हाँ हाँ कोई काम है, कोई सीरियल चल रही है अपनी फेवरेट, हाँ कोई होगा और कारण तो कहते हमारा भी उदयाधीन कार्य हो रहे है, उसको कहते हैं रे मूर्ख तो मुझे लेके कैसे अच्छे पदवियां प्रदान की है, वो चरणानुयोग वाले के लिए कहा था स्थूल बुद्धि, अब इसको कहते रे मूर्ख, कुछ कहने से तो होता नहीं, यानी हम कहने नहीं, ये हमारा चारित्र मोह है, वो कहने से नहीं होता, कि सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार है, यानी जो फल मिलेगा तो अभिप्राय का मिलेगा, यानी इसका अभिप्राय क्या है, प्रश्न में ही उसका अभिप्राय घटित हो रहता है। वो कहता है हम विषयादि का सेवन करेंगे और कहेंगे कि हमारा भी उदयाधीन है, यानी वो करना चाहता है। इसलिए जैन शास्त्र के अभ्यास से अपने अभिप्राय को सम्यक रूप करना, अभिप्राय ने श्रद्धा, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो कैसे होगा? जैन शास्त्र के अभ्यास से अभिप्राय ठीक होगा पहले में पहले, और अंतरंग में विषयादि के सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता। यानी अभिप्राय में तो उसके विषयादि के सेवन का ही अभिप्राय है। इस तरह चरणानियोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। अभिप्राय की बात है ना, हम क्यों शिविरों में जाना चाहते हैं? शिविरों में क्यों जाना? चलो 8 दिन छुट्टी हुई, कुछ रसोई करने का काम नहीं है, घर में बच्चे बहुत तकलीफ देते तो वहां थोड़ी शांति मिलेगी, ऐसा होता है कभी कभी।
लड़की को अच्छा लड़का मिलेगा,
अच्छा लड़की को अच्छा लड़का
अभिप्राय
की बात। पहले पंच कल्याणों को मैं इसीलिए जाया करते, हाँ वहाँ जैन समाज इकट्ठी होती थी ना, वो किसका लड़का है किसकी लड़की है सब कुछ पता चलता था।
दस लक्षण में भी ऐसे,
इसलिए के चरणानियोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख, इस यानी करणानियोग में वो पक्षपाती है, वो करना नहीं चाहता है और बहाने बनाता है, उसके यहाँ बात बता रहे। अब द्रव्यानियोग का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र में, ये हमारे आपकी सबकी बात चल रही, जो द्रव्यानियोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से समझ रहे हैं वो क्या कहते हैं, इस शास्त्र में जीव के गुणस्थानादिक रूप विशेष, विशेषाने डिटेल्स, और कर्म के विशेष, इनका वर्णन है, कर्म की अवस्थाओं का वर्णन है, उसको जानने से अनेक विकल्प तरंग उठते हैं। बाबा कब उठते हैं? ये गुणस्थानों से होते हैं। तथा कुछ सिद्धि नहीं है, इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव ना, इस शुद्ध स्वरूप को अनुभव ना, और स्व और पर का भेद विज्ञान करना, इतना ही कार्यकारी है। अथवा इसके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र है उनका ही अभ्यास करना योग्य है, उसको कहते हैं हे सूक्ष्माभास बुद्धि। ये और एक विरुद्ध आ गया है, क्या कहते हैं? सब कर भेद विज्ञान करेंगे, अपने में लीन रहेंगे। तो कहते हे सूक्ष्माभास बुद्धि, तूने कहा वह सत्य है, फिर भी उसको पहले में पहले उसके हाथ ने अपने स्वरूप में ही रहना योग्य है, परंतु अपनी अवस्था देखना, यदि स्वरूपानुभव में वह भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर रहता है तो अन्य विकल्प क्यों करने, वहां ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर संतुष्ट होना। सुधारस ने अमृत, स्वरूप के आनंद रूपी अमृत को पीते हुए उसी का आस्वाद लेते हुए संतुष्ट रहना, परंतु निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग रहता नहीं। इवन सम्य दृष्टियों के लिए बात बता रहे, उनके लिए भी, उन्होंने तो स्वपर का भेद विज्ञान भी कर लिया है, तो उनके लिए भी वहां तो निरंतर ठहरा नहीं जाता है, स्थिरता नहीं होती अपने में। तो कहते हैं निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग रहता नहीं, उपयोग अनेक अवलंबन को चाहता है, किसी एक चीज में उपयोग नहीं टकता है, वो बारंबार यहां से वहां वहां से वहां। अरे भोजन करने बैठे तो भी क्या है, खाली एक रोटी और दाल खाते है, उसके साथ सब्जी एक नहीं दूसरी चाहिए, फिर और दूसरा कुछ चेंजेस और भी कितने कितने चाहिए, चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, अचार चाहिए,
सलाद
सलाद रहेगी। और वो भी रोज एक नहीं चलेगी बात, तो हम अवलंबन अलग अलग, अभी भोजन हो गया, अभी तृप्त हो गए ना, नहीं अभी दूसरा कुछ अवलंबन चाहिए। खाने की बात नहीं है, एक देखो मैं आपको एक शॉर्ट में बता, उपयोग अनेक अवलंबन चाहता है। टीवी के सामने बैठे हो और हाथ में रिमोट कंट्रोल है तो क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। क्यों? उपयोग अनेक अवलंबन चाहता है। यहाँ अरे वहाँ कौन सी सीरियल चल रही हो, वहाँ जानू तो सही, जानू तो सही, जानू तो सही। तो कहते उपयोग अनेक अवलंबन को चाहता है, इसलिए जिस काल में वहाँ उपयोग नहीं लगता, वहाँ यानी अपने स्वरूप में, तब गुणस्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास करना। और इसमें उपयोग सूक्ष्म हो जाता है, इसमें से हटकर फिर अपने स्वरूप में ले जाना, वहां नहीं टिकता है तो इसी का अभ्यास करना, ये बात कहें। पुनश्च तू ने कहा अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना वह योग्य ही है, परंतु वहां भेद विज्ञान करने के लिए स्वपर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है। वहां तो कहते हैं वो जीव है वो तो, यानी स्वर पर, ये बाकी सब पर है, एक तू अलग है और तेरे अलावा अन्य सभी जीव, सभी पुद्गल, सभी ये सब, इतना बता दिया तो बस इतना ही बता दिया ना, तो सामान्य से बता दिया स्वर पर क्या है। परंतु कहते हैं विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट नहीं होता। विशेष ज्ञान बिना ने फिर जीव का लक्षण कहेंगे, उसके परिणामों की बातें करेंगे, फिर यहाँ कर्मों के उदय के रूप की बातें करेंगे, बंध कैसे कैसे होता है, उसका उदय कैसे होता है, उसमें क्या क्या बातें होती, तो स्पष्ट रूप से बात समझ में आती कि बस ये तो परमाणुओं का ढेर है और मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। तो कहते स्वर पर का भेद विज्ञान करने के लिए ये कार्यकारी अधिक। विशेष ज्ञान बिना इन्हें डिटेल जाने बिना सामान्य का जानना स्पष्ट नहीं होता। यानी बस हमने स्व पर कह दिया और हमने स्व किसको माना और पर किसको माना, ये उज्ज्वला ये शरीरमय और आप ये आशाबेन पर है, मंदाबेन पर है, तेजलबेन पर है, ये स्व पर है कि नहीं? उसको ऐसा जानना है कि उसने त्रिकाली मैं हूँ माना, परंतु उसने पर्याय को स्वीकार किया कि नहीं किया, किस अपेक्षा से उसने अपेक्षा जाने कि नहीं जाने। क्योंकि जैसे मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, अन्यमति भी कहते हैं, वेदांति भी कहते हैं और ये भी कहता है, तो इसका कहना सत्य है कि असत्य है? क्योंकि पहले जीवों के डिटेल्स यानी विस्तार से जानेगा कि ये गुणस्थान है, मार्गणास्थान है, जीव अभी इस पर्याय में है परंतु पर्याय जितना नहीं है, तब उसका जानना सही जानना होगा। ये तो व्यवहार है, ये तो झूठा है, झूठा है, झूठा है। इसको यानी उसको कैसा ज्ञान चाहिए, कैसा सम्यक दर्शन चाहिए, मिथ्या ज्ञान वाला। यानी उसका ये जानना सही नहीं हो रहा, इसलिए जीव के और कर्म के विशेष विशेष यानी डिटेल्स, उसकी अवस्थाएं अच्छी तरह जानने से ही स्व पर का जानना स्पष्ट होता है। यानी यहां भी पर्याय को जानकर फिर अभेद ऐसे अपने स्व की, वहां वो त्रिकाली त्रिकाली यानी क्या होता है, शुद्ध नय का विषय ने उसी में पर्याय को भी ऐसा भिन्न कर दिया कि वो पर्याय बिना का ही वो अभाव ही कर दिया उसने, वो नहीं है उसकी बात। ये विशेषों को जानकर फिर अभेद ऐसा अखंड उसका उसको लेना है, सामान्य को लेना है, उसमें भी वो ऐसा उसको लगता है ये सामान्य और ये विशेष है और ये विशेष बिना का सामान्य, ऐसा नहीं है। ये सामान्य है और उसके अंदर विशेष है और विशेषों को गौण करके सामान्य अभेद को अखंड हम स्वीकार करेंगे तो वो विशेषों को जानता ही नहीं है। ये हमेशा उदाहरण आता है भारत है, तो भारत क्या है, तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से राज्य आते हैं, उसको जाना ही नहीं, तो उसको भारत का जानना सही होगा कि नहीं होगा? यानी अखंड भारत है, अखंड भारत है, अरे पर अखंड है, पर कौन सा अखंड है, कौन से खंडों का लक्ष्य छोड़कर हमने अखंड भारत को ले लिया, तो उसमें महाराष्ट्र गुजरात ये सब है, परंतु उसको भेदों को छोड़कर अभी अखंड को ध्यान में लेना, उसको कहेंगे त्रिकाली सामान्य ध्रुव।
ये आत्मा को भी अनादिकाल से अनंत काल तक विकारी और अविकारी पर्यायों का पिंड
का है। आत्मा तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहा, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम कहने से जीव के, या अभी हम जीव की बात करेंगे, द्रव्य किसको द्रव्य कहेंगे? तो गुणों का पिंड तो है ही है, परंतु उन गुणों में प्रत्येक समय में पर्याय हो रही है। कब से हो रही है? अनादि। कब तक होगी? अनंत काल। तो वो पूरा द्रव्य लेना कि एक समय वाला द्रव्य लेना है? तो पूरे द्रव्य में उसकी सभी अवस्थाएं गर्भित है कि नहीं है? अवस्थाओं को हम लक्ष्य नहीं कर रहे, परंतु सभी उसमें आ गए कि नहीं आ गए, उसका लक्ष्य छोड़ना है। हम तो उनको ही रहित कर देते, द्रव्य को अवस्था से रहित करना चाहते, ये उसकी भूल हो रही है।
द्रव्य कभी पर्याय बिना हो ही नहीं सकता।
इन्हें पहले विशेषों को जानेंगे और फिर उसका लक्ष्य छोड़कर, इतने मात्र जीव नहीं है, जीव तो बस अनादि अनंत है। जैसे मिथ्या तो गुणस्थान में, वो उसका स्वरूप नहीं है, राग द्वेष है, पर्याय में है। यदि पर्याय का स्वीकार नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं रहे, है ही नहीं है, तो चिंता काहे की? फिर ये ध्यान व्यान की चक्कर क्यों लगाना? राग से रहते है, पर्याय से रहते ही है, तो फिर ये चिंता क्यों रही? ख्याल में आ गया? तो ये उसका सही जानना जब तक नहीं होता है, तब उसकी ये अभिप्राय में भी भूल रह जाती है। इसलिए विशेषों को जानना कहते हैं, अच्छी तरह से समझकर। देखो यहाँ फिर वो कहेंगे, भेद विज्ञान करने के लिए, 10 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन, वहाँ भेद विज्ञान करने के लिए स्व पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है। कहाँ? द्रव्य नियोग में, अध्यात्म शास्त्रों में। और विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट नहीं होता। अन्यत्र विशेष जानने वाले की भी महत्ता आती है और विशेष जानने की भी महत्ता आती है। हमें सीखना है तो और स्पेशलाइजेशन करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है मेडिकल में भी, और दवा लेनी है किसी के पास से तो कौन चाहिए? स्पेशलिस्ट चाहिए। वो विशेष जानकारी पाई है। इसलिए जीव के और कर्म के विशेष अच्छी तरह से जानने से ही स्व पर का जानना स्पष्ट होता है। उन विशेषों को जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, क्योंकि सामान्य शास्त्र से, सामान्य नहीं, जनरल कथन होता है, मोटा मोटा कथन होता है, स्थूल कथन होता है, तो कहते हैं सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान है, बलवान है, अधिक कार्यकारी है। वही कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम, विशेषो बलवान भवेत। यहाँ सामान्य से विशेष को बलवान नहीं कहा, सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र, यानी सामान्य का कथन करने वाले शास्त्रों से विशेष यानी डिटेल में कथन करने वाले शास्त्र अधिक कार्यकारी है। तो सामान्य शास्त्र तह यानी उनसे खरे खर तो विशेष शास्त्र बलवान है। वहां वह कहता है, अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव ना उपादेय कहा है। ये थोड़े छोड़ने वाला थोड़ा ही है। क्या कहते हैं अध्यात्म शास्त्र में क्या कहा? कि अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। वो शुद्ध स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं गुणस्थान आदि विशेषों से रहित है, क्योंकि हमने ऐसा भी, वो तो ध्यान करने वाले ऐसा भी सुनाते हैं ना कि गुणस्थानातीतो हम, मैं तो गुणस्थानातीत ऐसा हूँ, या समय सार में भी लिखा है ना, क्या गुणस्थान मैं नहीं, मार्गणास्थान मैं बंद स्थान मैं नहीं, उदय स्थान मैं नहीं, वर्गना मैं नहीं, वर्गना मैं नहीं, स्पर्धक मैं नहीं, सब लंबी चौड़ी लिस्ट बताई 50 से 55 गाथा में। तो वहाँ कहते हैं, हाँ टाइम हो गया, अच्छा है। तो उसका क्या, उसका प्रश्न और उत्तर हम कल पढ़ेंगे, अभी अपना समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो।